अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची लाहौर इस्लामाबाद भालपुर पिशावर सियालकोट दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंचे मेरी आवाज सबको मैं कहना सुबह बखैर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 19 रबी उसानी 1443 हिजरी नवंबर की 25 तारीख सन 2021 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ नाम है मेरा अदील प्रोग्राम सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी बातें आपकी पसंद का म्यूजिक आप लोगों के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। आज थोड़ा सा साइन इन लेट हुआ जिसके लिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ 4-5 मिनट लेट हुआ अपने एवरेज से एंड आई टेक कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। बारा जी कराची की आज की सुबह इज एक्सट्रीमली ह्यूमिड इट्स लाइक इस वक्त ये वाली सिचुएशन हुई भी है टेम्परेचर तो वाले नहीं है जो होते हैं टेम्परेचर अभी मेरे ख्याल से कोई 20-21 डिग्रीज होगा लेकिन इस वक्त कराची में ह्यूमिडिटी इज वेरी हाई एंड बिकॉज ऑफ दिस वेरी हाई ह्यूमिडिटी देयर इज एक्सट्रीम फॉगी वेदर। कराची के बाद मजाफाती और खुले इलाकों में इस वक्त जबरदस्त किस्म की फॉग है और काफी सारे लोग जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर रहे हैं द पिक्चर्स फ्रॉम देयर एरियाज जिसमें मलीर कैंट का एरिया नजर आ रहा है मुझे। नया नाजमाबाद ने आजकल एंट्री मार दी है काफी सारे मैसेजेस नया नाजमाबाद से आ रहे हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन की भी तस्वीरें आ रही हैं जिससे अंदाजा ये हो रहा है कि आज कराची में वाकई सीन काफी ज्यादा फॉगी है एंड या आई रियली होप कि ये फॉग जो है ये जरा थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए बिकॉज अगर ये जल्दी फॉग खत्म नहीं हुई तो उसके बाद ये काफी हेजी किस्म का वेदर बन जाएगा एंड बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल एंड वेरी डिफिकल्ट एंड ऑल एंड स्टफ सो ग्रेट। चलें जी प्रोग्राम अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील और या दैट्स वन वर्ड। और अभी जो है वो आप लोगों के मैसेजेस पे भी मैं नजर डालता हूँ कि आज का पहला मैसेज यूसुफ नवाब ने हमें किया आदाब अर्ज़ है थैंक यू सो मच। नजम साहब कहते हैं आई एम थिंकिंग सिंस मैनी डेज दैट यू हैव listeners from various field like lawyers, doctors, engineers, entrepreneur, trading, expert, banker, etc. So may I suggest you to invite such listeners and have a chit chat and Q&A session. Maybe Najam sahab not in the main show. Agar main show mein maine apne listeners ko apne zahir hai wo to diverse field se log isliye belong karte hain because subah ka time aisa hota hai log apne dafatar ko ja rahe hote hain and all. So It has got to do with the time of the timing of the show. लेकिन अब सीन ये है कि मैं कोई कुछ और एक्टिविटी की जा सकती है जिसमें अपने लिसनर्स को बुलाया जा सकता है और किया जा सकता है लेकिन और उनसे बातचीत की जा सकती है लेकिन मेन स्ट्रीम शो के दरमियान ये करना बिकॉज सी एवरी वन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट ये भी तो एक पॉइंट ऑफ व्यू है ना। सो या आइडिया बुरा नहीं है विदाउट डाउट। ऑल राइट रेहान उमर ने तस्वीरें भेजी हैं दिस इज मलीर कैंट ऑल राइट मलीर का एरिया कराची का सबब मजाफाती एरिया है एंड या डॉक्टर जीशान बेग ने तस्वीरें शेयर की हैं बिल्कुल जी कराची से पाकिस्तान से या पता नहीं किस शहर से ये लंदन जो है ये फ्लाइट गई है जिसमें आपने आपके पास भी शायद व्हाट्सएप पे ये तस्वीरें आई होंगी इस्लामाबाद से लंदन हीथ्रो ये फ्लाइट जाती है जिसमें लोगों ने इंतहाई गंद मचाई हुई और काफ़ी ज़्यादा कचरा जो है वो सीटों पर आस पास जो है वो फेंका हुआ है। और वैसे ये जो इस्लामाबाद से हीथ्रो की फ़्लाइट होती है ना लंदन की ये वैसे भी फ़्लाइट बड़ी मज़ेदार फ़्लाइट होती है। मज़ेदार फ़्लाइट का मतलब ये कि इसमें एक बड़ा मखसूस तबका जो है वो ट्रैवल कर रहा होता है और तबके से मुराद ये कि गलत बात तबका गलत वर्ड मैंने बोला है एक मखसूस जोग्राफियाई खत्ते की आवाम ज़्यादा सफ़र कर रही होती है। और हमारे अब्बू जो है मैंने तो कभी इस फ़्लाइट पर सफ़र नहीं किया लेकिन हमारे अब्बू जो वालिद साहब क्योंकि कैबिन क्रू में हुआ करते थे तो बताते थे कि इस्लामाबाद से लंदन और इस्लामाबाद से ओस्लो की जो फ़्लाइट होती है कहते हैं यार ये कोई फ़्लाइट होती है जितना शोर इस फ्लाइट पे मच रहा होता है जितना शोर यानी ऐसा लग रहा होता है आप कहीं जुमा बाज़ार में खड़े हुए हो और वहाँ पे जो है ना ये वहाँ से ये फ़्लाइट जो है ऑपरेट हो रही है। और वो बस यही चीज़ आई एम श्योर पहली बार किसी ने तस्वीरें लेके ये डाल दी वरना इन सेक्टर्स की फ़्लाइट्स पे ऐसा ही होता होगा मुझे तो ऐसा ही लगता है सीन। अतर खान साहब ने स्कीम 33 की तस्वीरें शेयर की हैं काफ़ी फॉग है वहाँ पे। इसके अलावा एसके साहब ने जुनेद अकरम का व्लॉग शेयर किया है पाकिस्तान पवेलियन इन दुबई एक्सपो दैट इज़ कूल। इसके अलावा जीशान बेग साहब कहते हैं इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो बैन हो गया, इस पे हम कल बात कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में. मोहम्मद वकार कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील एंड समराइज फैमिली, थैंक यू सनराइज फैमिली, थैंक यू मोहम्मद अली रऊफ साहब, थैंक यू सो मच. आतिफ जब्बार साहब सब लिसनर्स को हेलो कहते हैं, कहते हैं प्लेजेंट मॉर्निंग इन द कराचीज आउटस्कर्ट्स इंडीड. काजी शारिक साहब ने भी जो है वो ब्यूटीफुल फॉगी मॉर्निंग की तस्वीरें शेयर की हैं, बहरिया टाउन की वीडियो और तस्वीरें मोहम्मद वकार साहब ने शेयर की हैं, नवीद बेग साहब भी मलीर कैंट में मौजूद हैं, वहाँ की पिक्चर्स शेयर की हैं, सारा खान नया नाजमाबाद में, और वो बहुत सारी फॉगी तस्वीरें इस वक्त. लिटरली आप लोग भी ये हैशटैग ज्वाइन कर सकते हैं हैश सनराइज विद अदील, और उसमें जाके आप भी जो है वो देख सकते हैं कि लोग क्या क्या तस्वीरें जो है वो शेयर कर रहे हैं. इमरान यूसुफ, इनके साहबजादे इबाद और साहबजादी अलवीना, दे आर गोइंग टू द स्कूल लिसनिंग टू द शो, थैंक यू सो मच. फहीम अली खान साहब सब रेगुलर लिसनर्स को सलाम कहते हैं, और कहते हैं जी द सरकार इज अनेबल टू कंट्रोल प्रिटी नॉर्मल इशूज, दे आर मेकिंग आर लाइफ इवन मोर मिजरेबल ड्यू टू देयर इनकॉम्पिटेंस. द फ्यूल इशू इज द टोटल फेलियर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट. ऑल राइट, चलें जी, ग्रेट. मोहम्मद खलीलुल्लाह साहब का मैसेज आया है, और आपने ये नस्ला टावर के हवाले से आपने बात किया, बिल्कुल जी. चीफ जस्टिस साहब का ऑब्सेशन विद नस्ला टावर इज अनबिलीवेबल, सीरियसली स्पीकिंग. आजा कराची शहर जो है वो हमें पता है कि इनक्रोचमेंट्स पे बना हुआ है, कराची की एक पूरी पहाड़ी है जिसपे कब्जा हुआ हुआ है, पूरी इनक्रोच्ड है वो, आई मीन अनबिलीवेबल. रात में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई स्विट्जरलैंड में किसी शहर को जो है ना वो देख रहे हैं, लेकिन वो पूरी की पूरी कच्ची आबादी बनी हुई है जो कि पहाड़ों पे बनी हुई है. आधा शहर, आई मीन वाई स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर एरिया, लेकिन नस्ला टावर के साथ जो ऑब्सेशन है दैट इज अनबिलीवेबल, जबरदस्त. ये ओके जी, इसके अलावा खलीलुल्लाह साहब कहते हैं ईमान ईशाल मनाहिल के साथ शो सुन रहे हैं वाइल गोइंग टू द स्कूल, ग्रेट. देन वी हैव गॉट मोहसिन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द शो, थैंक यू. फॉगी मॉर्निंग नियर सफारी पार्क. उमेर शेख, आमिर शहबाज साहब कहते हैं लाहौर मॉर्निंग दीज डेज. लाहौर में मुझे लग रहा है कुछ स्मॉग की सी कैफियत जो है वो बेहतर हो गई है. ओके, इमादुल हक ने तस्वीरें भेजी हैं, कह रहे हैं फॉर अ सेकेंड आई थॉट आई एम स्टिल लिविंग इन लाहौर, एंड या जबरदस्त. इसके अलावा अब्दुल रऊफ साहब थैंक यू, एंड देन डॉक्टर हसीब नवाज अहमद फ्रॉम चारसदा. Okay guys, I have to move towards a break. I'm so sorry. I have to move towards a break in fact. So, milte hain aap se thodi der baad. Don't go anywhere and keep listening. And Ishal ko bhi. Ishal Varsi is listening to my show in Islamabad. And having a chilly morning today. All right, great. Enjoy. We are not having a chilly morning at all. So, ye break hai. Iske baad wapas aate hain. Program continue karte hain. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back guys. Ek baar phir se aapko khushamdeed kehte hain. This is a sunrise show with me Adil. And acha ji, bilkul ek afsosnak zara announcement bhi karte chalein. Hamare bahut hi regular listener hain, hamare show ke ek bahut hi popular listener hain Peer Zaheer sahab. Unki walida ka kal raza ilahi se jo hai wo intiqal ho gaya. So unki walida ko jo hai wo unki maghfirat ko ke liye unko duaon mein yaad rakhiye, aur iske alawa Peer Zaheer sahab aur unki family को भी अपनी दुआओं में याद रखी कि अल्लाह ताला जो है वो उनको सब्र जमील अता फरमाए. और पीर साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हम सब उनके गम में जो हैं वो बराबर के शरीक हैं. सो उनकी और उनकी पूरी फैमिली हमारी दुआओं में शामिल है. अल्लाह ताला मगफरत फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन. सलमान खलील का मैसेज आया है, कहते हैं फॉगी मॉर्निंग, टुडे इज फॉगी मॉर्निंग, हिबा एंड मुस्तफा लिसनिंग टू माय शो. अच्छा जी, डॉक्टर हसीब चारसद्दा से मैसेज मैंने आपका पढ़ता. इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो एक किस्म की आपको पता है टेंशन से गुजर रहा है, और वो टेंशन जो है अबाउट फ्यूल की अवेलेबिलिटी के हवाले से है. कल कराची के काफ़ी सारे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में बड़ा रश था, बिकॉज लोगों ने पेट्रोल स्टेशन के बाहर जो है वो तवील कतारें जो हैं वो लगाई हुई थी, और वो तवील कतारें जो हैं जाहिर है वो पेट्रोल की सर्च में थी. एक पैनिक इस वक्त फैला हुआ है, इवन दो सुनने में ये आ रहा था कि जो पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, रात गए तक ये खबरें आती नहीं कि गालबन उन्होंने अपनी हड़ताल जो है वो कॉल ऑफ कर दी है, और उसकी वजह ये है कि जी हुकूमत ने उनके मार्जिन्स बढ़ाने का जो है वो फैसला कर लिया है. और ये काफ़ी अरसे से ये मामला जो है ये गर्दिश कर रहा था. ज़ाहिर है आप जानते हैं कि हमारे जो पेट्रोल पम्प डीलर एसोसिएशन है, इन आपको ये भी बात पता होगी कि इनको जो मार्जिन मिलता है वो फिक्स्ड मिलता है, द अमाउंट इज लॉक्ड, इट्स फिक्स्ड, इट्स नॉट लिंक्ड टू द प्राइस ऑफ द ऑयल, उसकी कीमत के साथ जो है वो लिंक नहीं है. सो काफ़ी सारी तवातुर के साथ कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन उस पर इनका जो ये जो डीलर्स हैं ये कहते हैं कि जी हमारा मार्जिन जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है इन परसेंटेज टर्म. एक्चुअली इनका मार्जिन जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो गया, इसलिए वो ये चाह रहे थे कि इसको जो है वो बढ़ाते रहा जाए. जिस तरह ऑयल की कीमत ऊपर नीचे होती रहती है, मुझे नहीं पता है नीचे करने में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन ऊपर करने में जो है बहरहाल ये काफ़ी पुश कर रहे हैं. या ज़्यादातर जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनका कहना यह है कि जी उनके जो कोकोज हैं, उनके जो कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन सेंटर्स हैं, मुराद पेट्रोल पम्प्स हैं, वो तो खुले रहेंगे और वहाँ पे पेट्रोल की सेल जो है वो जारी रहेगी. लेकिन हम ये जानते हैं कि जी ये जो जो पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग वाला गेम है ये ज़्यादातर फ्रेंचाइज बेसिस पर चलता है. इसमें कंपनी के अपने पेट्रोल स्टेशन जो हैं वो काफ़ी कम होते हैं. मेरा ख्याल से 100 में से कोई 4-5 इनके अपने होते होंगे, 6 होते होंगे मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा होगा 10 होते होंगे यार, लेकिन इतने भी नहीं होते होंगे, 10 भी नहीं होते होंगे मेरा ख्याल से. तो वो खुलें, लेकिन बाकी जितने जो इन्होंने फ्रेंचाइज किए हुए हैं, जिन्होंने आउटसोर्स किए हुए होते हैं और जिनको अपना ये लाइसेंस देते हैं अपना फ्यूल सेल करने के लिए और अपनी अपनी ब्रांडिंग वगैरह के लिए, वो सारे के सारे बंद होंगे. सो आज अभी तक ऐसा लग रहा है कि ये हड़ताल जो है ये जारी है. सो ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस. लेट्स सी कि अब ये एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, कितने अरसे जो है ये मामला रहता है. अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों की मदद फरमाए, आमीन सुमा आमीन. इंजीनियर आसिम अनवर साहब कहते हैं गोइंग टू स्कूल विद हानिया, दैट इज ग्रेट. फरहान इस वक्त पेट्रोल की लाइन में जो है वो लगे हुए हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे. फरहान नाजिम साहब, अताउर रहमान साहब ने तस्वीर भेजी है जी ब्यूटीफुल मैग्निफिसेंट प्रेयर हॉल की, इट्स अ वेरी वेल टेकन पिक्चर, सो लेट मी रीट्वीट दैट एज वेल. एंड वी हैव गॉट सुबान हमीद, अभिनंदन को चंदे पर के भी अवार्ड मिल गया, हाउ स्ट्रेंज. चले इस पे हम कल बात कर चुके हैं काफी तफसील से. उस्मान ताहिर कहते हैं ऑन हाईवे नियर लाहौर और राइट ग्रेट. चले जी बाकी क्या हो रहा है दुनिया में, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उसके हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान की सियासत तो अपनी जगह चल रही है. अखबार की छह सुर्खियां शामिल करें. कल मरियम नवाज शरीफ ने जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कुछ जब सवाल पूछे गए तो उसमें उन्होंने कुछ जवाब दिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन सुनने में आया. स्पेशली वो जो एक ऑडियो क्लिप मरियम की रिलीज़ हुई थी जिसके बारे में जो है वो कहते ही हैं कि जी शुरू में ही आ रहा था कि जी मरियम की आवाज़ नहीं है. उस पर भी ज़रा हम आगे चल के बात करेंगे. ज़ाहिर है इंटरनेशनल ख़बरों में बात करें, अमेरिका में एक बहुत बड़े केस का जो है वो फैसला हुआ है. अ यंग ब्लैक मैन, ये स्टेट ऑफ जॉर्जिया है जहाँ पे एक नौजवान सियाफ आम आदमी को पिछले साल जो है वो गोलियां मार दिया गया था. तो उसके कत्ल का जो कत्ल करने वाले लोग थे उसके हवाले से फैसला आ गया है ज्यूरी का. एंड दीज मैन आर एक्चुअली फाउंड गिल्टी ऑफ दैट. तो उस कत्ल के हवाले से जो है प्रोग्राम में आज आगे चल के हम ज़रूर बात करेंगे. मौका मिला, टाइम मिलता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे भी जो है वो कुछ जिक्र ज़रूर रहेगा. बिकॉज ज़ाहिर है इस वक्त आर इकोनॉमी इज़ गियरिंग अप फॉर अ नंबर ऑफ बिग चेंजेस. एंड या ऐसा लगता है कि हुकूमत का जो इकोनॉमिक एक हनीमून पीरियड था वो अब अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है. ओके, जर्मनी में एक नई गवर्नमेंट आई है, अगर मौका मिलता है उसके हवाले से भी बात करेंगे. और इसके अलावा माइक टाइसन का भी जिक्र हो सकता है प्रोग्राम में. माइक टाइसन, रिमेंबर माइक टाइसन, जी हाँ बिल्कुल, वही आदमी जो कि मशहूर बॉक्सर और इस वक्त आपको पता है कि वो एन एंटरप्रेन्योर नाउ. माइक टाइसन, इन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, अब वो पता नहीं उसका क्या स्टेटस है. ईमान दिलों का अल्लाह ताला जानता है बेहतर, मैं उस पर कोई कॉमेंट नहीं कर सकता. लेकिन इस वक्त जो है वो कैनबिस का बहुत बड़ा, आपको पता है वो एंटरप्रेन्योर है, बहुत बड़ा. अमेरिका की बहुत सारी रियासतों में कैनबिस जो है वो लीगलाइज कर दी गई है और उसकी वजह से ये भंग के जो पौधा होता है ना, भंग की काश्त, तो वहाँ पे ये कैनबिस के बड़े एंटरप्रेन्योर हैं. तो एक मुल्क ने दरख्वास्त की है उनसे कि यू बिकम आर ब्रांड एम्बेसडर फॉर कैनबिस, आर लोकल कैनबिस. सो देखते हैं माइक टाइसन इस पे क्या जवाब देते हैं. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद एक गाना भी सुनेंगे अच्छा सा. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ओहो, गाना चलाना था हमको तो यार, मैं तो वो ऑन एयर आ गया, गाने का प्लान था यार, मैंने गाना निकाला भी नहीं वैसे यार, बट चलो सुन लेते ना यार. चलें, दिस इज शिराज उपल, इट्स बीन अ व्हाइल सिंस वी प्लेड हिम लास्ट टाइम, और दिस इज द ओरिजिनल वर्जन ऑफ रोया रे. एंजॉय, मिलते हैं आपसे इसके बाद, डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. पूरा नहीं चलाएंगे ये गाना, ठीक है जी, बिकॉज हमें अखबार में शामिल, आम खबर भी तो शामिल करनी थोड़ी देर में. Alright, that was Shiraz Upal with Roya Ray. जल्दी से आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वजीर आजम साहब ने कल एक तकरीब से खिताब किया. कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों की फलाह बहबूद के नए मंसूबों के इफ्तिताही तकरीब थी, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई. एक्सप्रेस ने अपनी आज की लीड बनाया है. ऑडियो टेप्स में जजेस के नाम आना ड्रामा है. चोरी के पैसे से जायदादें खरीदने वाले रसीदें पेश ना कर सके, उल्टा अदलिया फौज के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, ये कहना है इमरान खान का. पहले असेंबली में झूठ बोला, फिर कतरी खत, कैलिबरी फॉन्ट, फ्रॉड निकले. सजा याफ्ता मुजरिम से जजेस की कॉन्फ्रेंस कराई गई. मैंने अपने फ्लैट के तमाम कागजात जमा करवाए हैं. जंग ने जो लीड बनाई है वो भी इमरान खान की इसी खिताब पे बनाई है, तो उसको हम रिपीट नहीं करते. डॉन का लिखना है, मरियम आस्क एक्स सीजेपी नॉट टू हाइड बिहाइंड इंस्टीट्यूशन, मिनिस्टर से हर कन्फेशन ऑफ बाइंग मीडिया हाउसेस वारंट ऑफिशियल प्रूफ. आपको पता है कि कल मरियम ने कल जब मीडिया से वो बात कर रही थी अपनी नैब में अपियरेंस के बाद, बाय द वे उनको बहुत ही लंबा रिप्रीव मिल गया, 21 दिसंबर की अपडेट उनको मिल गई है. मजे हैं यार इन लोगों के भी कसम से. बट बहरहाल अब हुआ यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खिताब किया उसके बाद कल इस्लामाबाद में, और वहां पे उनसे सवाल पूछा गया उस ऑडियो क्लिप के हवाले से, जो कि बाद में मरियम के इस एतराफ के बाद कही असल में उन्हीं की आवाज़ है. ये काफी चर्चा का सबब जो है ये बन गए, जिसमें उन्होंने नाम लेकर, अच्छा समा टीवी पर तो खास उनकी नजरें गर्म थी जाहिर है, और समा इज आई थिंक एंजॉयिंग दिस लाइमलाइट एज वेल, आई कैन टेल यू फॉर श्योर. ओके, सो समा जो है वो समा के साथ ARY 92 न्यूज एंड 24. वैसे 24 न्यूज तो मुझे समझता था कि ये तो बड़ा प्रो नून लीग चैनल मुझे लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि इश्तेहार बंद होने के बाद शायद उन्होंने अपना कुछ जाविया बदल लिया हो सकता है. अच्छा, मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि ये पुरानी क्लिप है, कोई 2009 का उन्होंने जिक्र किया. अच्छा, मजेदार बात यह कि 2009 में ना नदीम मलिक साहब समा में हुआ करते थे, ना 24 चैनल या 92 चैनल एग्जिस्ट करता था, तो ये पता नहीं. अब मरियम ने बात मान ली है ये. अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम अंडर व्हाट कैपेसिटी वॉज शी गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर, बिकॉज अगर आपको याद हो डॉन ने काफी अर्सा पहले खबर गुब्बन साहब ने खबर शाया की थी, सोर्सेज को उन्होंने कोट किया था कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में चलने वाला जो मीडिया सेल है वो एक्चुअली मरियम के डायरेक्टली कंट्रोल में आता है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. फवाद चौधरी कहते हैं मरियम की जेर सरपरस्ती मीडिया सेल ने 18 अरब बांटे, इंक्वायरी करवाएंगे. ओके, ऑडियो मेरी है, मरियम नवाज ने एतराफ कर लिया. मैं नहीं कहती ऑडियो को टुकड़ों में जोड़ा गया, ये बहुत पुरानी है, लीगी रहनुमा का ये कहना है. ओके, मरियम नवाज कहती है साकिब निसार कौम को बताएं किसने सजा देने पर मजबूर किया, अदलिया मामले का बोझ ना उठाए, किसने कहा कि इमरान को लाना है. ऑडियो साकिब निसार के खिलाफ चार्जशीट और एतराफ जुर्म, अदालत में बेगुनाही साबित करें, शौकत सिद्दीकी और राणा शमीम से भी पूछा जाए. ओके जी आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा डीलर्स की आज से हड़ताल, पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों मोटरसाइकिलों की कतारें, PSO का सेल जारी रखने का ऐलान, मार्जिन 6% किया जाए, और जोर जबरदस्ती की गई तो दमादम मस्त कलंदर होगा, ये कहना है डीलर्स का. ओगरा कहते हैं पेट्रोल की किल्लत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. ठीक हो गया जी. अच्छा, हमारे स्टेट के पास ना इतने तपड़ नहीं है कि वो कार्रवाई कर सके इन के खिलाफ. बातें आप सारी करवा लें, कार्रवाई शारवाई कुछ नहीं होनी, वी ऑल नो अबाउट दैट. ऑलराइट जी, कराची की सारी मशीनरी लेकर जाएं और नस्ला टावर गिराएं, चीफ जस्टिस का हुक्म. आप कमिश्नर बनने के अहल नहीं, अदालती हुकुम को मजाक समझते हैं, गफलत बरतने और गैर संजीदा अमल पर क्यों ना आपको जेल भेज दें. ओके, सईद गनी का ये कहना है जो कि वजीर इत्तलात और मेहनत है सिंध, कहते हैं अदालती फैसले का पाबंद के साथ खड़ा होऊंगा. मुराद अली शाह भारतीय नहीं, पाकिस्तानी सूबे के वजीर आला हैं, वजीर आजम बात नहीं करते. ओके, ठीक हो गया जी. नस्ला टावर गिराने का अमल शुरू, अतराफ की सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, शाहरा फैसल पर रश. यार मैं अभी गुजरा नस्ला के बराबर से यार, ओ भाई ये एहतियात से तोड़े यार, खुदा का खौफ करें, और गिर विर गया ये टावर यार तो बहुत मसला हो जाएगा अगर पूरा कोलैप्स कर गया ये, बिकॉज आई डोंट थिंक कि हम कोई बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें फॉलो कर रहे हैं. एनीवे जी, टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक का हुआ है वक्त, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद खेलों की खबरों के साथ. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back, guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. Sunrise Show with Adil Azhar and good morning in the Australian program. अभी tune in किया. Loads of messages waiting for me there, जिनको मैं अभी थोड़ी देर में शामिल करता हूँ. And लेकिन इससे पहले हमें बात करनी है कुछ खेलों के हवाले से, right? All right, अभी क्या सीन है? अभी सीन ये है कि पहले बात करते हैं कुछ हो जाए जिक्र क्रिकेट का. क्रिकेट में हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट के हवाले से. एक तो आप जानते हैं इस वक्त मुकाबला हो रहा है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान. और यार वेल इसमें तो वेस्ट इंडीज राइट नाउ इज इन डायर स्ट्रेट. वैसे आज मैच का पांचवें दिन का खेल होने वाला है और कल हुआ ये कि एक मौके पर वेस्ट इंडीज इज एक्चुअली चेजिंग अराउंड कोई 350 के करीब उनको रन जो हैं वो जीतने के लिए दरकार थे. लेकिन हुआ ये कि अपनी दूसरी इनिंग में वेस्ट इंडीज एट वन पॉइंट इन टाइम वर 18 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, यानी 18 रन पे उनके 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे. कुछ सहारा जरूर दिया निक्रुमा बोना और जोशुआ डिसिल्वा ने. 18 रन पे बॉनर खेल रहे हैं और डिसिल्वा इज बैटिंग ऑन 15. द मेन डिस्ट्रॉयर इन चीफ साबित हुए रमेश मेंडिस, जिन्होंने 4 खिलाड़ियों को आउट किया हुआ है ऑलरेडी. सो वेस्ट इंडीज को अगर आज बारिश ना हो, ये मैच जाहिर है बारिश से गाल में होने वाला, ये मैच थोड़ा मुतासर हो रहा है, लेकिन अगर आज बारिश नहीं हुई तो दे शुड बी एबल टू विन द गेम प्रीटी इजीली श्रीलंका, बिकॉज 4 विकेटों को डिफेंड करना फॉर द एंटायर डे इज गोइंग टू बी टफ. ऑलराइट, दूसरा टेस्ट मैच बल्कि सीरीज का आज आगाज हो रहा है. हाई प्रोफाइल सीरीज है. दीज आर द फाइनलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप. इन फैक्ट इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विनर, इनॉग्यूरल टूर्नामेंट की विनर न्यूजीलैंड का मुकाबला हो रहा है दुनिया की टॉप टेस्ट साइड इंडिया के साथ. और किसी और फॉर्मेट में उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, इंडिया टेस्ट में जो है वो तो हमें जानते हैं कि बहुत ही फॉर्मिडेबल किस्म की टीम है. और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम पे, इंडिया का वैसे ही होम पे रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उनका कोई बहुत ही ज़बरदस्त रिकॉर्ड है. अब तक अपने होम ग्राउंड में उन्होंने जो है वो तकरीबन 34 टेस्ट मैचेस जो है वो खेले हैं अगेंस्ट न्यूजीलैंड. 16 मैचेस में इंडिया को कामयाबी हुई है, सिर्फ 2 मैचेस में न्यूजीलैंड जीता है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज जस्ट चेकिंग आउट सम हिस्ट्री एंड सम फैक्ट्स, और मैंने देखा ये कि आखिरी बार न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में जो शिकस्त दी थी, यू हैव टू गो बैक ऑल द वे टू 1988, 1988 में आपको जो है वो जाना पड़ेगा. और वहाँ पे मुंबई में होने वाले टेस्ट मैच में जो है जिस जमाने में जॉन राइट क़यादत किया करते थे न्यूजीलैंड की, उस वक्त उन्होंने इंडिया को शिकस्त दी थी एट द वैनकडे स्टेडियम. और जॉन ब्रेसवेल मैं देख रहा था वॉज द मैन ऑफ द मैच, ही गॉट 8 विकेट्स एंड सर रिचर्ड हैडली गॉट 10 विकेट्स इन दैट गेम. और इंडिया की टीम में उस वक्त क्रिस श्रीकांत, अरुण लाल, नवजोत सिद्धू, वेंक सारकर कप्तान होते थे, अजहरुद्दीन, रवि शास्त्री, कपिल देव, ये वो टीम उनकी हुआ करती थी जिसको इन्होंने शिकस्त दी थी. तो उसके बाद से जो टेस्ट मैचेस हुए उसमें न्यूजीलैंड आइदर हैव बीन एबल टू ड्रॉ द गेम और दे हैव बीन लूजिंग द गेम. स्पेशली पिछले 6 टेस्ट मैचेस जो है वो लगातार हारा हुआ है न्यूजीलैंड इंडिया के हाथों. इनफैक्ट पिछली जो टेस्ट सीरीज हुई थी 2016 में, सो यू गो बैक अ लॉन्ग टाइम, काफी अर्से बाद न्यूजीलैंड इंडिया खेलने आया है टेस्ट सीरीज. 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी. क्लीन स्वीप किया था इंडिया ने, तीनों टॉस जीते थे और टॉस जीत के उन्होंने जो है वो बैटिंग की थी. और फिर आपको पता है कि इंडिया जिस तरह की विकेटें बनाता है वहाँ पे चौथी बैटिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है. सो तीनों मैचेस इंडिया ने अच्छे बड़े मार्जिन से 197 रन, 178 रन और 321 रन के मार्जिन से जो है वो जीतने में कामयाब हुए थे. तो काफी मुश्किल ये सिचुएशन होने वाली है. याद रहे जी, केन विलियमसन ने वक्फा लिया था. ही डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द T20 सीरीज बिकॉज ही वॉन्टेड टू फोकस ऑन द टेस्ट सीरीज. सो ही इज लाइक अ मैन ऑन अ मिशन राइट नाउ. बट क्या वो डिलीवर करने में कामयाब, वो और उनकी टीम क्या डिलीवर करने में कामयाब हो पाएंगे अगेंस्ट इंडिया इन द फॉर्मेट इन विच परहैप्स इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड, ये कहना जरा मुश्किल है. मैच अब से तकरीबन 50 मिनट बाद, यानी 9 बजे इस मैच का पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक का आगाज होना है. सो 20 मिनट में टॉस होगा. टॉस यानी हमारे शो के दौरान ही इंशाल्लाह हो जाएगा, तो फिर आपके साथ हम उसकी अपडेट भी शेयर कर लेंगे. वैसे आई वाज ऑनेस्टली थिंकिंग 1988, इंडिया के तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी मेरे ख्याल से होते होंगे उस वक्त. आई थिंक ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर टिल 89, सो या आई एम प्रीटी श्योर. सो बहरहाल ये हो गई बात, कुछ ये हो गई बात क्रिकेट की. पाकिस्तान का टेस्ट सीरीज का आगाज ऑफ कोर्स कल से हो रहा है और उस पे भी जो है ना इंशाल्लाह आपको हम कल थोड़ी सी हम बात कर लेंगे. उस टेस्ट सीरीज के हवाले से फुटबॉल का जिक्र हो जाए कुछ, क्या ख्याल है जी? मैनचेस्टर सिटी यस्टरडे वाज फेसिंग पेरिस सेंट जर्मेन, जी जनाब लियोनेल मेसी की साइड, एंड मैनचेस्टर सिटी ने इस मैच में कामयाबी हासिल की. द कैम कम फ्रॉम बिहाइंड विक्ट्री 1-0 से. मैनचेस्टर सिटी वाज नॉट यूनाइटेड, डिड आई सी यूनाइटेड, आई एम सो सॉरी, मैनचेस्टर सिटी, या सो 1-0 से दे वर ट्रेलिंग टिल द 63rd मिनट, लेकिन उसके बाद रहीम स्टर्लिंग और जीसस के गोल की बदौलत दे वन द गेम 2-1, और इसका इनको एडवांटेज ये हुआ दैट दे टॉप देयर टेबल एंड टू क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड. इसके अलावा लिवरपूल ने शिकस्त दी एफसी पोर्टो को एलाकांत्रा, और मोहम्मद सालेह ने जो है वो गोल स्कोर की 2-0 से. उन्होंने कामयाबी यहां पर हासिल की. एथलेटिको मैड्रिड हैड अ डिफीट एट होम 1-0 अगेंस्ट एसी मिलान, और बोरुशिया डॉर्टमुंड लॉस्ट 3-1 टू स्पोर्टिंग. सो या एनी अदर मैच, बार्सिलोना और बेनफिका का मैच 0-0 से बराबर रहा. सो ये रही जी अपडेट फुटबॉल के हवाले से भी, और जल्दी से आप लोग कुछ मैसेज शामिल करते चले हम बिफोर आई हेड टूवर्ड्स ब्रेक. शाहीन ताहिर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, नो पीएसओ स्टेशन प्रोवाइडिंग पेट्रोल इन अ क्यू. अच्छा, पीएसओ का ये कहना है कि उनके जो कंपनी ऑपरेटेड फ्यूल स्टेशंस हैं वो पेट्रोल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा कि उनके कंपनी ऑपरेटेड जो है वो पंप आपको कहाँ मिलेंगे. फोरम अख्तर साहब कहते हैं फॉगी कराची यूनिवर्सिटी रोड ऑन द वे टू सी व्यू फॉर देसी ब्रेकफास्ट विद फ्रेंड्स. क्या बात है सर, बोन एपिटी. एंड नियर मेट्रो फ्लाई ओवर, मोहसिन पाशा साहब ने भी वीडियो शेयर की है. सो ऐसा लग रहा है, बल्कि नुमान ने सही बोला है कि कराची की फॉग जो है वो इस वक्त मेरे शो के हैशटैग पे जो है वो छा गई है. लॉट्स ऑफ पिक्चर्स देयर दैट यू कैन सी. फरा मुश्ताक सेज द वे यू ड्राइव योर कार इन डज इंडिकेट योर ब्रेन हेल्थ. एनीवन अग्री? आई थिंक आई हैव टू अग्री देयर. सिट खान, आजकल ऐसे ही हुआ यार, आज सुबह ऐसे ही हुआ. आज मैं गाड़ी में जा रहा था तो एक लैंड क्रूजर V8 वाला जो है ना वो अजीब जंगलियों वाली गाड़ी चला रहा, बिल्कुल घमारों वाली. यानी पढ़ा लिखा आदमी होगा, चश्मा लगाया हुआ, इवन तो जरूरत नहीं थी उसकी, फुल मूंछों को ताव दिया हुआ. एंड ऑल दैट मींस वाजंट द ड्राइवर, ही वाज द ओनर ऑफ द कार हिमसेल्फ. अपने हुलिये से तो जाहिर लग रहा था, लेकिन जिस वैशी और बेहिमाना अंदाज से वो जंगली इंसान गाड़ी चला रहा था, दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड. मुझे ऐसा लगता है इन गाड़ियों में इंसान घुसते ही कुछ एरोगेंट सा हो जाता है. अल्लाह ताला इन गाड़ियों से बचाए हमें. ओके जी, सिट खान मेन यूनिवर्सिटी रोड की तस्वीर भेजी है. ऑलराइट, डॉक्टर नौशीन का मैसेज आया है, क्या बात है, आज तो कमाल हो गया, जबरदस्त. अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सबको जी. उन्होंने बहुत बहुत सलाम भेजा है, थैंक यू. लिमिटेड विजिबिलिटी एट लियारी एक्सप्रेसवे, सजाद नकवी साहब का भी यही कहना है. उमर बिन तनवीर साहब ने एयरपोर्ट रोड की तस्वीर भेजी है, वहां पे भी फॉग है ऑफकोर्स. इसके अलावा आसिफ खान कहते हैं ऑल दो saw on Sama TV, but yesterday on Instagram you look exactly like Chandrachur Singh from Machis. अच्छा, ये कह रहे हैं कि तुम चंद्रचूर सिंह जैसे लग रहे थे. यार वो काफी लोग कहते थे जब मैं छोटा था ना, दो तीन और लकीली अभी तक हीरो से मिला है. नहीं, अब इस उम्र में आके मुझे कैरेक्टर एक्टर से भी लोग मिलाने लगे. यार तुम उस बंदे से बहुत मिलने लगे हो, उसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बहुत फिट एक्टर है यार. वो सही एक्टर है वो बंदा, और कहते हैं उससे मिलते हो तुम. बट एक दो हीरो के नाम, वो मेरा दोस्त कल मुद्दी सुन रहा था, वो तो मुझे एक जमाने में बोलता ही उसी हीरो के नाम से बुलाया करता था, तो वो बड़ा साउथ इंडिया का हीरो था. तो बट वो नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत फिल्मों में काम किया, उसे नाम मैं नहीं बता रहा, आपको शर्म आएगी मुझे. अच्छा जी, चौधरी नईम साहब एडवोकेट साहब कहते हैं गुड मॉर्निंग, माई सन स्टार्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ हिज कॉलेज लाइफ एट FCCU. जबरदस्त जी, मुबारक हो आपके साहबजादे को. फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में माशाल्लाह जी इनका एडमिशन हो गया है, बेस्ट ऑफ लक टू हिम. फहीम अली खान कहते हैं अच्छा भाई, आप यार आप चीफ जस्टिस साहब के लिए जो अलकाब इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे मरवाएंगे क्या आप यार. एहसन यूनुस कहते हैं विद रेफरेंस टू नस्ला टावर ऑब्सेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, व्हाट अबाउट द सिमिलर एग्जांपल ऑफ सुप्रीम कोर्ट विसिनिटी लाइक बनीगाला एंड ग्रैंड हायट रीजेंसी एंड होटल. आई थिंक ये बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में एक सवालिया निशान है कि जहाँ पे आपने सर आप रहने देना सब कुछ, बहरिया टाउन कराची, आपने उसको तो रेगुलराइज एट वॉट एवर प्राइस यू डिसाइडेड, बट यू डिसाइडेड टू रेगुलराइज बहरिया टाउन जहाँ पे भी कुछ यही तरीका था. फिर उसके बाद यस ग्रैंड हायट हो गया बनी, आपने हर जगह कहा है कि जी बैन फाइन पे करो और तुम जो हो वो इसको रेगुलराइज करवा लो. तो यार इनका भी कर देते बेचारों का, जस्ट थिंक अबाउट दोज पीपल यार. थिंक अबाउट, लोगों ने अपनी जमा पूंजी जिंदगी भर कुल कायनात लेके नस्ला टावर में फ्लैट खरीदा होगा, अब वो अभी कल मैं शाजीब के शो में देख रहा था, उसके एक मुतासरीन में से एक जो है वो बैठे हुए थे और वो बता रहे थे कि वो लोग किस तरह अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, कहाँ किसके घर कौन, कोई रिश्तेदार क्या है, कोई दोस्त क्या है, किसी ने किराए में घर लेना पड़ा है. आई मीन सीरियसली यार, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा जुल्म हो गया इन लोगों के साथ यार. कोई कॉम्पनसेशन देने को तैयार नहीं है. बिल्डर कहता है कि मैं तो तुम्हें बुकिंग प्राइस पे करूंगा उस फ्लैट की, जो अपनी इस वक्त प्राइस है बुकिंग प्राइस पर, जिस पर उन्होंने नस्ला टावर खरीदा होगा. इस वक्त तो कराची में जिस तरह प्राइसेस पिछले 2-3 साल में बढ़ी हैं, उनको तो उसके 1/3 एरिया वाला अपार्टमेंट जो है वो भी नहीं मिल पाएगा. सो यार ये क्या जुल्म हो रहा है यार. अभी ये चीफ जस्टिस साहब इसका भी तो कुछ नोटिस लेना, इन लोगों का क्या होगा यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा. अच्छा जी, थैंक यू भाई फॉर योर सजेशन, वी हैड अ ग्रेट टाइम इन योर सिटी. काशिम मकसूद साहब कराची में अच्छा टाइम गुजारने के बाद वापस चले गए. ऑलवेज गुड टू हेयर इट समबडी कम्स टू कराची एंड हैड अ गुड टाइम. आई रियली फील, ऐसा लगता है कि मैंने उनकी मेहमान नवाजी की है. बट या कराची रियली सफर्स फ्रॉम एन इमेज क्राइसिस. लेकिन जो लोग कराची आते हैं उनको इस बात का अंदाजा होता है कि शहर जितना हम इसके बारे में रोना धोना करते हैं उतना भी बुरा नहीं है वैसे. और बल्कि ये तो नाउ आई थिंक वी आर एंटरिंग इनटू अ टाइम व्हिच इज एक्चुअली द परफेक्ट टाइम टू विजिट कराची, दिसंबर जनवरी एंड मिड ऑफ फेब. बतूल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके साहबजादे कैफ ने जो है ही गॉट रनर अप अवार्ड एट द केपीटी कराची रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इज इट द टेबल टेनिस टूर्नामेंट. बतूल काइंडली कंफर्म दैट. अली डार शेखुपुरा रोड हर सुबह की स्मोक, दैट इज सो सैड. ये भट्टों से निकलने वाली मेरे ख्याल से है ये चीज. और अभी आपको हम लिए चलते हैं ब्रेक की जाने, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. या दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अज़र एंड गुड मॉर्निंग. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है एंड थैंक यू सो मच काशिफ बारी साहब, थैंक यू आपके मैसेज का. एंड या ओके वजाद साहब प्रोग्राम हमारा सुन रहे हैं और कहते हैं टुडे आवर ड्राइवर आमिर भाई सेइंग स्पेशल सलाम टू यू, ही इज अ रेगुलर फोर्स्ड लिसनर बट ही इज अ फैन नाउ एंड योर प्लेलिस्ट एंड ऑफ योर प्लेलिस्ट. थैंक यू सो मच फॉर द शो, थैंक यू सो मच. आई डोंट नो वजाद अभी आप प्रोग्राम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, आपको भी सलाम और आपके ड्राइवर जो हैं आमिर भाई उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम. प्रोग्राम के बहुत रेगुलर पहले तो बहालत मजबूरी सुन रहे थे लेकिन अब आप कहते हैं कि उन्होंने अब शो को पसंद भी करना शुरू कर दिया है. नाइस. इसके अलावा अफजल खान साहब ने सलाम भेजा और साथ साथ मुझे एक वीडियो में टैग किया है. ये चाइनीज सेंट्रल टीवी जो है सीसीटीवी का जो ग्लोबल आर्म है उसमें कल एक रिपोर्ट आई थी करोट हाइड्रो पावर स्टेशन के हवाले से विच इज स्टार्टेड. अब उसमें पानी भरना, पानी की भराई जो है वो शुरू हो गई है. तो इसका मतलब ये कि तकरीबन उसका 90% काम जो है वो मुकम्मल हो गया है. और ये करोट हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ये सूबा पंजाब में है. और कल हुआ यही, कल मैंने, कल किसी और ने मुझे इस वीडियो पे टैग किया था एंड मैंने ऐसी, फिर मैं गूगल मैप में गया यार. वैसे गूगल मैप भी क्या चीज बनाई है इन लोगों ने यार, कसम से. आप बैठे रहते हैं इतनी देर जगहों को एक्सप्लोर ही करते रहते हैं. सो ये करोट हाइड्रो पावर ये अच्छा बड़ा मनसूबा है यार, मुझे नहीं पता था इसके बारे में. आई थिंक दे इट विल बी प्रोड्यूसिंग समवेयर क्लोज टू 700 megawatt of electricity, clean electricity. That's the most important thing. No fossil fuel being used there. Zaire hydroelectric. ये run of the river project है. यानी इसके लिए कोई बड़ी सी आपने लेक वगैरह नहीं बनाई है बल्कि दरिया का पानी जो है वो बहता हुआ इससे बिजली प्रोड्यूस कर रहा होगा. जाहिर है उसको आपको पता है कि एक सर्टन एंगल से और एक सर्टन अंदाज से गुजारा जाता है जिसके थ्रू टर्बाइन जो है ये चलती हैं. जस्ट लाइक अभी कुन्हार रिवर में सूखी किनारी बन रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक का प्रोजेक्ट है केपी में. और जो लोग अभी रिसेंटली नारायण वगैरह गए उन्होंने सूखी किनारी का देखा होगा कि वहाँ पे बड़ी तादाद में चाइनीज़ मौजूद हैं और उनकी बाकायदा एक कॉलोनी बनी हुई है. दे आर वर्किंग देयर, उसकी टनल्स वगैरह उन लोगों ने बना ली. आई थिंक इट्स अ 3 kilometer लॉन्ग टनल दैट दे हैव क्रिएटेड फॉर दैट प्रोजेक्ट. अमेजिंग प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन, बिग, मच बिगर देन दिस करोट. और मैं तो करोट का देख रहा था जोग्राफिया इसका ना, कि ये कहूटा से आगे जो रोड निकलती है तो उससे एक तरफ तो मेरे ख्याल से रावलकोट की तरफ आजाद कश्मीर, दूसरी तरफ जो रोड निकलती है टूवर्ड्स सम सदर्न पार्ट देयर, वहां पे ये आजाद कश्मीर की बॉर्डर पे जो है ये करोट पावर प्रोजेक्ट जो है ये बना हुआ है. 30 साल तक इसको चाइनीज कंपनी ऑपरेट करेगी, उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट को यह हैंड ओवर कर दिया जाएगा. सो या आई वाज सिटिंग ऑन गूगल मैप यस्टरडे और मैं रिवर झेलम का रास्ता ट्रैक कर रहा था और वो ऊपर जाता है, फिर मजा आया यार उसमें. वहाँ ऊपर जाता है मुजफ्फराबाद से वो राइट टर्न लेता है. इनफैक्ट आ तो उसी तरफ से रहा होता है, मुजफ्फराबाद इज डाउन स्ट्रीम एंड दिस करोट इज फर्दर डाउन स्ट्रीम. लेकिन फिर वहां से आप ट्रैक करते हुए श्रीनगर पहुंच जाएं एंड फिर श्रीनगर को जूम इन करें एंड ऑल एंड जबरदस्त यार क्या चीज बनाई है. अगेन आई रिपीट गूगल मैप वाह. ओके जरा बात करते हैं अमरीका की. अमरीका में कल एक इम्पोर्टेंट केस का फैसला जो है वो आया है और वो जो केस का फैसला आया है दैट इज अबाउट द मर्डर ऑफ अ यंग ब्लैक मैन. ओके एक स्याह फाम लड़का था जिसको फरवरी 2020 में जॉर्जिया स्टेट में कत्ल उसका एक शहर है बर्न्सविक के नाम से जहां पे उसको कत्ल कर दिया गया था. हुआ क्या था इस बंदे का नाम था अमोद ऑर्बरी. इसका नाम था अमोद ऑर्बरी और ही वॉज 25 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज अ जॉगर. ओके वो जॉगिंग करता हुआ एक प्रीडोमिनेंटली सफेद फार्म एरिया में जो है वो पहुंच गया और भागता हुआ वो जा रहा था कि वहां उस नेबरहुड में कुछ सफेद फार्म लोगों ने उसको देखा और 911 को कॉल की और उन्होंने कहा कि ये बंदा हमें यहाँ पे एक भागता हुआ नजर आ रहा है जो कि अब से यहाँ कुछ थोड़ा अरसा पहले कुछ चोरियां हुई थी उसमें इन्वॉल्व आदमी की तरह इसकी शक्ल हमें लग रही है. तो बहरहाल ये फादर एंड सन थे मैक माइकल फैमिली के और उन्होंने जो है वो इसको चेस किया अपनी गाड़ी में. उनका एक नेबर जो है उसने भी इनको ज्वाइन किया. उन्होंने उस सिया फार्म शख्स यानी अमोद ऑर्बरी को रोकने की कोशिश की और ऑर्बरी ने जो है वो उनको सुनी अनसुनी कर दी जिसपे उन्होंने उस बंदे के ऊपर हमला किया और फिर एक स्कफल हुआ उन लोगों का आपस में फटा हुआ जिसमें उन सफेद फार्म लोगों ने जो है वो उस सिया फार्म लड़के पर गोलियां चला दी. 3 गोलियां उसको लगी और अहमद ऑबरी 25 साल का मौके पर ही हलाक हो गया. जाहिर है इसके बाद मामला काफी खराब हो गया बिकॉज ये बात इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से ही साबित हो गई दैट अहमद ऑबरी जो है वाज जस्ट अ जॉगर. वो सिर्फ भागता हुआ वहां पे पहुंच गया था एंड ही वाज अनआर्म्ड. उसके पास कोई भी असलहा नहीं था. बहरहाल अमरीका में आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये जो रेस रिलेटेड जो वाकयात हैं और जो हालात हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता है मामला काफ़ी सेंसिटिव हैं और ये ऐसा नहीं कि ये अभी है बल्कि ये तो इससे कहीं ज़्यादा पहले हुआ करते थे. अमेरिका की जो तारीख है उनकी मॉडर्न तारीख भी इस तरह के नस्ल परस्ताना फसादात से जो है उस वाकयात से जो है वो भरी पड़ी हुई. और ये तो फिर भी ये बात मैं कर रहा हूँ फरवरी 2020 की यानी डोनाल्ड ट्रंप का दौर था. और याद रहे जॉर्जिया इज वन ऑफ द सदर्न स्टेट्स. ओके ये अमेरिका की जनूबी रियासतों में मानी जाती है जहां पे वैसे ही नस्ल परस्ती का एलिमेंट जो है सफेद फार्म लोगों का सिया फार्म लोगों के खिलाफ जो तासुब है वो वैसे ही नॉर्मली अमेरिका के बाकी इलाकों से ज्यादा होता है. तो बहरहाल इन तीनों बंदों को इन तीनों सिया फार्म सफेद फार्म लोगों को इन दोनों तीनों गोरों को जो है वो गिरफ्तार किया गया. इन पे पूरा केस चला सब कुछ हुआ और कल बिलाखिर जूरी ने अपना फैसला सुनाया एंड ऑल 3 मेन आर फाउंड गिल्टी. उनको जो है वो कसूरवार ठहरा दिया गया. अमेरिका में आपको पता है जूरी सिस्टम होता है काफी सारी फिल्मों में आपने ये देखा होगा. सो जूरी ने जो है ये फैसला किया है कि ये बंदे गिल्टी थे वो बंदा बेगुनाह था उसको इन्होंने जानबूझ के कत्ल किया है और उनका जो ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने उस सिया फार्म शख्स को सेल्फ डिफेंस की नियत से कत्ल किया ये उसको नहीं साबित कर पाए नहीं प्रूफ कर पाए. सो द प्रोसिक्यूशन वन सरकार की यहाँ पे फतह हुई है बिकॉज केस जो है वो सरकार की मदियत में जो है वो दाखिल किया गया था. अमेरिका के सदर जो बाइडन ने भी इस फैसले की तहसीन की है. इसके अलावा कमला हैरिस अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट जो कि खुद अपने आप को सिया फार्म गर्दानती हैं इवन दो हमें पता है कि उनकी वालदा सदर्न इंडिया से उनका ताल्लुक था वालिद उनके सिया फार्म थे लेकिन अपने आप को वो अपने एथनिसिटी के कॉलम में सिया फार्म ही लिखती हैं. उन्होंने भी इस फैसले को जो है वो सराहा है. सिया फार्म लोगों में जो है वो एक खुशी की लहर भी इसमें दौड़ी है लेकिन फिर भी आई केप्ट व्हेनेवर आई हर्ड अबाउट दिस केस जब से मैंने इस केस का सुना है एक्चुअली फेल्ट रियली सॉरी फॉर दिस गाय. आई मीन इस बेचारे की गलती क्या थी. बेचारा जॉगिंग करता हुआ जा रहा था और उसकी गलती ये थी कि वो एक सफेद फार्म नेबरहुड में जो है वो दाखिल हो गया था और सिर्फ शक की बुनियाद पर इस लेवल की नफरत और हेट है कि यार आपने उस बेचारे की जान ले ली. वेरी सैड इंसिडेंट दैट टुक प्लेस बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कातलों को जो है वो सजा मिली है. अब ये जॉर्जिया है अभी यहाँ पे ये दे आर फाउंड गिल्टी इनको सजा क्या मिलनी. अमेरिका में होता यही है कि फिर वो सजा बाद में अनाउंस की जाती है बट जॉर्जिया इज अ सदर्न स्टेट एंड अगर मैं गलती पर ना हूं तो अमेरिका की बहुत सारी सदर्न स्टेट में अभी भी डेथ पेनल्टी होती है. तो क्या इनको डेथ पेनल्टी मिलने वाली है लाइफ इंप्रिजनमेंट होने वाली है दैट रिमेन्स टू बी सीन. लेकिन बहरहाल अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम के लिए ये एक एक मेरे ख्याल से एक ओके न्यूज है, गुड न्यूज है, बिकॉज कल ही मैंने ये खबर सुनी थी अमेरिकन जुडिशियल सिस्टम के हवाले से कि मिजूरी स्टेट में एक शख्स जिसको 1979 में कत्ल के शुबे में लाइफ इंप्रिजनमेंट, तीन बंदों को कत्ल करने के इल्जाम में लाइफ इंप्रिजनमेंट विदाउट पेरोल, 50 साल की माफ कीजिएगा सजा उसको विदाउट पेरोल, यानी उसको कोई छोड़ने मोड़ने का सीन नहीं, उसको 50 के 50 साल गुजारने थे, या टीनेजर बैक इन 1979 वाज पनिश्ड, और अब जाके उसको जज ने रिहा किया है इस बुनियाद पर कि उस बंदे को अब से 42 साल पहले गलत सजा दी गई थी। सोचें यार, एक गलत फैसले की बुनियाद पर कितने लोगों की पूरी एक जिंदगी जाया हो गई। एंड जस्ट थिंक अबाउट दोस पीपल यार, हु आर लैंग्विशिंग इन जेल, जो लाइंग इन जेल फॉर एक्चुअली कमिटिंग नो क्राइम, सीरियसली वेरी सैड मैटर्स। ऑलराइट, यूसुफ अली खान साहब की आवाज आपने सुनी, स्लाइटली लॉन्गेस्ट सॉन्ग एंड यार स्ट्रेच्ड अ बिट फॉर श्योर, एंड मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ थोड़ा सा टाइमिंग का, आज मैंने थोड़ी सी टाइमिंग अपनी आउट कर दी है, सो दैट मीन्स I have to head towards a break. Or break se wapas aake we shall have a slightly longer length. So, yeah, lots to talk. Dekhte hain agle aakhri 9 minute mein hum kya kya cover kar payenge. Milte hain is break ke baad. Don't go anywhere and keep listening. Welcome back, guys. Ek baar phir se aapko khush aamdeed kehte hain. This is the Sunrise Show with me, Adil. And yeah, jaldi se acknowledge kar chalun. Shariq Qazi, Zeeshan Haneef, Mansoor sahab ne gaane ko pasand kiya. Numan Yusuf, yes, he's talking about more cases jahan pe people were wrongfully accused. अभी एक ब्लैक लाइव मूवमेंट का भी एक मूवमेंट वाला भी एक लड़के को जो है वहां कल ही लास्ट वीक ही जो है वो उसको रिहा किया गया है, जिसपे काफी अफसोस का इजहार भी किया गया है। इसके अलावा मेलकम एक्स को मारने वाले जो है वो चार वो दो बंदे जो है उनको चार दहाइयों के बाद एक बार फिर से छोड़ दिया गया है। सो बहरहाल जहीर साहब दुबई में प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, थैंक यू सो मच। एंड देन वकास कहते हैं प्लीज वॉच प्रोजेक्ट इनोसेंस ऑन नेटफ्लिक्स, व्हिच इज ऑल अबाउट पीपल हु हैड बीन रॉन्गफुली इंप्लिकेटेड फॉर डेकेड्स in the United States. Very, very sad situation. All right, चलें जी, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था on BBC और this was about आपको पता है अभी इंडिया में जो फार्मर्स की मूवमेंट चल रही थी वो मूवमेंट अपने अब मंतकी अंजाम को पहुंच चुकी है, और उसकी रीजन जो है वो ये है कि फ्राइडे को इन्होंने ऐलान किया नरेंद्र मोदी ने दैट ही इज टेकिंग बैक दोज कॉन्ट्रोवर्शियल फार्म लॉज। अब ये एक मूवमेंट तो जाहिर है जो फार्मर्स थे मेनली फ्रॉम द इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब, जिसे हम मशरकी पंजाब कहते हैं, वो उन्होंने एक तो वो रोड पर आए हुए थे, उन्होंने बहुत सारी एक्सप्रेसवेज ब्लॉक की हुई थी, सड़कों पर मौजूद थे, प्रोटेस्ट चल रहा था, ये सब हो रहा था। दूसरा सोशल मीडिया पे, अब आपको पता है हर जंग सोशल मीडिया पे भी होती है, सो बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है कि किस तरह तकरीबन कोई 80 के करीब फेक अकाउंट जो है वो ट्रैक हुए हैं, और किस तरह ये फेक अकाउंट्स अपने आप को सिख पोस्ट करते हैं, इनफैक्ट दे यूज द हैशटैग रियल सिख। और इंडियन गवर्नमेंट का, नरेंद्र मोदी का, बीजेपी का जो पर्सपेक्टिव और पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आगे बढ़ाते थे, यानी एक तरह का वो सरदारी बैठे हुए होते थे, फेक अकाउंट्स होते थे, यानी उनकी तस्वीरें ऐसी लगती थी कि जैसे ये फेक हैं। जनरली लड़कियां कौर के नाम के, आपको पता ना जिस तरह मर्दों के नाम के साथ वहां सिख लगता है, खवातीन के नाम के साथ कौर लगता है, सो कौर के नाम वाली खवातीन बहुत सारी वहां पे बैठी हुई और फेक अकाउंट्स उनके बने हुए, और वो इंडियन गवर्नमेंट का जो नुक्ता नजर है इस पूरे मामले के ऊपर उसको आगे बढ़ा रहे होते थे। नाउ ये रिपोर्ट तो आप चाहें आप यू कैन गो टू बीबीसी एंड यू कैन रीड अबाउट दैट एंड ऑल, एंड आप सर्च करेंगे उनके मेन पेज पे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन दैट एक्चुअली सजेस्ट समथिंग। और वो जो ये बात बताती है वो ये बताती है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से इस वक्त वो एक बहुत ही आला लेवल पर पहुंच चुकी है सोशल मीडिया में प्रोपेगेंडा फैलाने के हवाले से। अगर आपको याद हो आपसे कुछ अर्से पहले वो यूरोपियन यूनियन डिस इन्फो लैब की जानिब से एक बहुत तफसीली रिसर्च आई थी कि किस तरह राइट विंग हिंदूज जो है इंतहाई दाएं बाजू की जो हिंदू पोलिटिकल RSS एफिलियेटेड जो लोग हैं वो किस तरह एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं, किस तरह ये फेक अकाउंट यहाँ पर मौजूद हैं जो कि एक मखसूस एजेंडे को जो है वो पेडल कर रहे थे, उसी टेक्निक को इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे सिखों के खिलाफ। और अब यहाँ पर आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि जहां पर ये सब कुछ चल रहा है वहां पे यही इंडिया बेस्ड जो जो फेक अकाउंट्स हैं वो पाकिस्तान के कितने सारे अपने अंदरूनी मामलात के ऊपर जो है वो डिसइन्फो यहाँ पे फैला रहे होंगे, नफरतें फैला रहे होंगे, या आपस में दिलों में रंजिशें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे होंगे, इसलिए सिर्फ सोचते रहे। ये दो तीन मोटे मोटे इस वक्त इश्यूज मेरे जहन में आ रहे हैं जिसपे हमें इस बात का अंदाजा है कि इंडिया की तरफ से डेफिनेटली मदद हो रही होगी उनकी, और आगे अकलमंद को जो है वो इशारा काफी होता है। जाते जाते जरा इथियोपिया का जिक्र करते चलें। इथियोपिया इज लिटरली इज हैविंग अ सिविल वॉर वंस अगेन, एक और बहुत बुरा हाल है वहां पे। मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले आपको इथियोपिया की पूरी स्टोरी सुनाई थी कि वहां पे हो क्या रहा। एक तरफ तो इथियोपियन सरकार है, इथियोपियन गवर्नमेंट है, उनके फोर्सेज है, उनकी आर्मी है, दूसरी तरफ उनका मुकाबला हो रहा है एक उनका एक सूबा है जिसको टिग्रे प्रोविंस कहा जाता है। टिग्रे प्रोविंस जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान किया, मेन गवर्नमेंट के खिलाफ जंग का ऐलान किया, और वो टिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट वहां पे एक है TPLF, वो गवर्नमेंट को शिकस्तों पे शिकस्तें देता देता अब कैपिटल एडिस अबाबा से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर जो है वो रह गया है। और मामला अब इतने नाजुक हो चुके हैं कि इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, जिनका प्रोग्राम में अक्सर मैं जिक्र करता रहा हूं बिकॉज आई हैड बीन अ बिग फैन ऑफ अबी अहमद, उन्होंने ये कहा है कि वो खुद, बल्कि उनकी तस्वीरें भी अब आ गई हैं कि वो खुद मिलिट्री फटीक पहने हुए, मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुए, ही इज देयर एट द फ्रंट, वो मेन बैटल फ्रंट पे जो है पहुंच गए। इस तरह इथियोपिया की जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, दे हैव ऑल्सो डिसाइडेड दैट दे विल बी फाइटिंग अलोंग साइड देयर आर्मी, देयर ओन आर्मी अगेंस्ट दिस TPLF जो वहां पे रेबल्स हैं उनके खिलाफ। और उनके मशहूर गालबन इथियोपिया के सबसे मशहूर स्पोर्ट्समैन जो है हाइली गैब्रेसलासी, ये लॉन्ग डिस्टेंस रनर, दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मल्टीपल टाइम गोल्ड मेडल विनर रहे हैं, उन्होंने भी जो है वो ये ऐलान किया है कि वो अपनी गवर्नमेंट के शाना बशाना जो है वो इस जंग में लड़ने वाले हैं। कोशिशें बड़ी की जा रही हैं कि इस जंग में सीज फायर की जाए या जंग बंदी की जाए, लेकिन लग ऐसे रहा है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये फाइनल शोडाउन के लिए जो है वो तैयार हैं। आपको बड़ी हैरत होगी कि अब से कुछ साल पहले की बात है कि ये इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अबी अहमद, इनको नोबेल का अमन इनाम जो है, नोबेल अमन इनाम, नोबेल पीस प्राइज जो है वो दिया गया था बिकॉज उन्होंने अपने एक और पड़ोसी मुल्क एरिट्रिया के साथ बहुत ही पुराना उनका एक सरहदी तनाजा था जिसको उन्होंने रिजॉल्व किया था, जिसपे उनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। और अब वही साहब जो है ही इज लीडिंग अ वॉर इन इट्स ओन कंट्री। इसकी बड़ी वजूहत है, बड़ा इसका बैकग्राउंड है, वो सारी बातें आगे चल के कभी बाद में जो है वो हम रिपीट कर सकते हैं। ऑलराइट, बाकी क्या चीज़ है, बाकी ये चीज़ है कि थैंक यू सो मच, आज तो मुझे लग रहा है हमारे इस शो में कुछ ज़्यादा ही तस्वीरें आप लोगों ने जो है वो शेयर की हैं और ये सही हो गया। ओके, जली लकड़ो साहब का मैसेज आया है, कहते हैं जी कोको स्टेशन जितने यानी कंपनी ऑपरेटेड जितने भी स्टेशन हैं वो आज खुले हुए हैं, ठीक हो गया जी। ताबिश अलवी साहब कहते हैं आई थिंक PSO शुड कैस्केड देयर ओन लिस्ट ऑफ पंप फॉर पब्लिक एरिया वाइज अवेयरनेस। मेरे ख्याल से काफी ज्यादा उनका सोशल मीडिया इस हवाले से बता रहा है कि कौन से पेट्रोल पंप जो हैं वो खुले हुए हैं। अपडेट ये आ रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ओनली कंपनी ऑपरेटेड पंप्स आर ओपन। अभी नवीद साहब का मैसेज आया है हमारे लाहौर के लिसनर्स ग्रुप में कि जौहर टाउन फ्रॉम अल्लाहू चौक टूवर्ड शौकत खानम PSO शेल एंड टोटल पेट्रोल पंप्स आर ऑल ओपन। सो वल्ला आलम, लेट्स सी क्या होता है। इफ्तिखार आलम कहते हैं सीन एन अगली फेस ऑफ जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान मेड फॉर कराची, ओनली नस्ला टार डिमोलिशिंग, नॉट गुड साइट फॉर अ स्टार्ट ऑफ द डे। कराची इज not the place for those who want to live with peace and follow the rules. Okay, ठीक हो गया। 2 PSO and a total pump are operational on main Korangi road. ये कहना है मुनीर अहमद साहब का। So scene काफी random लग रहा है। Scene काफी random लग रहा है because PSO के I think मेरे ख्याल से कोई 5 ही company operated pumps हैं कराची में। I don't know about लाहौर, लेकिन जो अब तक updates आ रही हैं वो ये कि उससे definitely ज़्यादा petrol pump भी जो है वो खुले हुए हैं। सब या तहरीन कहते हैं अदील भाई व्हाई डिडंट यू अपडेट अस अबाउट द पेट्रोल स्ट्राइक, आई ओनली लिसन टू योर शो। वाकई जिक्र जरूर करना चाहिए था मुझे, मतलब मेरा ऑनेस्टली ये ख्याल था कि मामला कल तक जो है ना रिजॉल्व हो जाएंगे, कल रात तक ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज जनरली हो जाते हैं, लेकिन इस बार डीलर्स जो है ना वो काफी मूड में लग रहे हैं। ओके, असद राणा कहते हैं जस्ट गॉट अ फ्यूल फ्रॉम अ कंपनी ऑपरेटेड फ्यूल स्टेशन इन लाहौर, बिसाइड अ फ्यू ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल स्टेशंस On are open on my way to the office. अब आपने जगह का नाम तो असद राणा बताया नहीं, लेकिन फिर भी बहरहाल हम ये कह जरूर सकते हैं कि काफी सारे स्टेशन जो हैं वो खुले हुए हैं। बतूल कहती हैं, यू रिजेंबल आयुष्मान खुराना अलॉट इवन योर वॉइस. ओके, इट्स अबाउट टाइम अदील. What about giving singing a shot? Singing is so therapeutic. Chale, okay, that's great. All right, Dr. Shaila, thank you so much. Good morning to you too. Anyway, guys, वक्त आ गया आप लोग इजाजत लीजिए अपना बहुत ख्याल रखें. इंशाल्लाह मेरी आप लोग सुखी. So till then, goodbye. God bless. Allah Hafiz. And Pakistan, Zindabad.